कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज हम अध्ययन कर रहे हैं गिनती की पुस्तक का, जो इसराइलियों द्वारा सिने पर्वत से आरंभ की यात्रा को कनान की सीमा मुआब के मैदान तक की यात्रा से जोड़ती है। आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
ये तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है, मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है, मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू। तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है, तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है। मैं जब भी
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी प्रभु की दया में और उसके वचन में रहकर कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम सब इन दिनों गिनती की पुस्तक से अपने अध्ययन को कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने 26 अध्याय को समाप्त किया था और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और आज के अध्ययन को हम अध्याय 27 से आरंभ करेंगे। लेकिन इसके पूर्व आइए हम सब परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो प्रतिदिन आपके जीवित वचन को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। पिता परमेश्वर, जब हम आज आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, हमारे कानों और हमारे हृदय और विचारों को खोल दे, ताकि हम अपनी इन आंखों से देख सकें, सुन सकें और उसके अनुसार हम चल सकें। पिताजी, हमारी प्रार्थना है कि आज अपने वचन के द्वारा आप हम में से हर एक से बातचीत करेंगे। हमारी विनती है उन भाई बहनों के लिए भी जो दुखी और निराश हैं, चिंता और बीमारी में हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पिताजी, आप उन पर भी अनुग्रह करें ताकि वे भी आपके वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सकें। इस समय फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु जी, आप हम सबकी सहायता करें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हमारे आज के अध्ययन का विषय है व्यवस्था अर्थात नियम के अधीन महिला का स्थान और मूसा का उत्तराधिकारी यहोशू। अब हम गिनती की पुस्तक के उस भाग में हैं जिसे हमने एक नई पीढ़ी के नाम से अंकित किया है। पिछली बार की जनगणना में हमने देखा कि यहोशू और कालेब केवल दो व्यक्ति थे जिनके नाम पुरानी जनगणना में मिलते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि उन 40 वर्षों में 20 वर्ष का व उससे अधिक की आयु के प्रत्येक लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। उस जंगल अर्थात मरुभूमि का वह सबसे कठोर काल था जिसमें वे सब मर गए थे। इस नई पीढ़ी के समक्ष नई समस्याएं थी। एक पीढ़ी के लिए दूसरी पीढ़ी को समझना प्रत्येक काल में सदैव से एक समस्या बनी है, क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी अपने विशेष समस्याओं का सामना स्वयं करती है। यह एक रोचक वक्तव्य है। किसी ने इस प्रकार कहा, जब आप युवक हो आप पुरानी पीढ़ी की आलोचना करते हैं और जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो नई पीढ़ी की आलोचना करते हैं। यह मानवीय स्वभाव जैसा प्रतीत होता है। मित्रों, जब हम गिनती के इस 27वें अध्याय में पहुंचते हैं तो पाते हैं कि नई पीढ़ी नई समस्याओं का सामना करती है। वास्तव में मूसा को नहीं मालूम था कि क्या करें। उससे प्रभु से विनती करनी पड़ी, क्योंकि दूसरे राष्ट्रों के नियमों के आधार पर स्त्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें जानवरों के समान समझा जाता था। आइए अब हम देखें इसकी समस्या क्या थी। गिनती की पुस्तक 27 अध्याय उसके एक पद में लिखा हुआ है, तब यूसुफ के पुत्र मनस्से के वंश के कुलों में से सलोफाद जो हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनस्से के पुत्र माकीर का परपोता था, उसकी बेटियां जिनके नाम महला, नोवा, होगला, मिल्का और तिरसा हैं, वे पास आई। मित्रों, यदि आपके परिवार में ढेर सारी पुत्रियां हो तो आपके भंडार में नामों की कमी पड़ जाती है और साधारण नाम आपको पसंद भी नहीं आते हैं। यहाँ एक सूची है, महला, नोवा, हगला, मिल्का और तिरसा। मैंने अब तक किसी महिला का नाम इनमें से नहीं सुना है। मैं सोचता हूँ, और क्यों? क्योंकि वे सलाह पहद की पुत्रियां थी। हम गिनती की पुस्तक 27 अध्याय उसके 2-5 पद में पढ़ते हैं, और वे मूसा और एलियाजर याजक और प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया, परंतु वह उस मंडली में का न था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। अब अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र न था, तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र न होने के कारण क्यों मिट जाए? हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दे। उनकी यह विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। मित्रों, हम देखते हैं और यह एक समस्या है। आप समस्या समझ सकते हैं कि इस पुरुष सलाहपहत की मृत्यु जंगल में हुई थी। इसकी 5 पुत्रियां और कोई भी पुत्र नहीं था। मूसा की व्यवस्था के अनुसार प्रतीत होता है कि केवल पुत्र ही पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था। पुत्रियों को इसमें कोई दखल नहीं था। दूसरे राष्ट्रों के नियमानुसार भी वे वंचित थी, अतः वे क्या करें? सलापहत की ये पुत्रियां बड़े उग्र स्वभाव की थीं। आजकल हम बहुत अधिक महिला अधिकार के बारे में सुनते हैं। निश्चित ही बाइबल में तो उन्हें अधिकार प्राप्त है, तो भी जितना हम बाइबल पढ़ते उतना अधिक महिला अधिकार के बारे में पता चलता है, और उन्हें यह अधिकार मिलना भी चाहिए। मेरे मित्रों, मूसा को समझ में नहीं आता कि क्या करें। मेरे विचार से शायद उसने कहा, अच्छा लड़कियों, मैं नहीं जानता कि तुमसे क्या कहूं, परंतु इतना समझ सकता हूं कि तुम्हारी बात में दम है, पर आजकल के नियम और रस्मों के मुताबिक तुम्हें निश्चित हो कि कुछ नहीं मिलेगा। अतः मूसा उनका मामला प्रभु तक ले जाता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर उनकी विनती स्वीकार करता है। गिनती की पुस्तक 27 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफात की बेटियां ठीक कहती हैं, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। मित्रों, यहां आप देखते हैं कि परमेश्वर महिला अधिकार के पक्ष में है। यह नियम कल्पना से भी महत्वपूर्ण लगते हैं। हमारे लिए अपने को उस युग में रखना बड़ा कठिन है जब महिलाएं पुरुष की चप्पल या जूती समझी जाती थी। मित्रों, कई प्रभु के दास जो वन जातियों के मध्य में अर्थात दूर दराज इलाके में कार्य करते हैं, ऐसे अनेक कहानी सुनाते हैं जहां युवतियों का व्यापार किया जाता है, उन पर अत्याचार होता है। प्रत्येक महिला को ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि बाइबल में प्रथम बार इस प्रकार के अधिकार की चर्चा हुई है और यह एक अद्भुत बात है। सालोफाद की पुत्रियां ठीक कहती हैं, तुझे उनका संपत्ति का भाग निश्चित ही देना चाहिए। अब इसके आधार पर परमेश्वर यहां नियम सिद्धांत स्थापित करते हैं। हम गिनती की पुस्तक 27 अध्याय उसके 8 से 11 पद में पढ़ते हैं, और इसराइलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटी के हाथ सौंपना, और यदि उसके कोई बेटी भी न हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना, और यदि कोई उसके भाई भी न हो तो उसका भाग उसके चाचाओं को देना, और यदि उसके चाचा भी न हो तो उसके कुल में से उसका जो कुटुंबी सबसे समीप हो उसको उसका भाग देना कि वह उसका उत्तराधिकारी हो। इसराइलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरेगी जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। मित्रों, यह एक अद्भुत कदम है जो संसार में मसीह के आने के लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिया गया था। मुझे इन महिलाओं की उग्रता और हिम्मत या साहस पर आश्चर्य होता है। मैं इनके विश्वास की सराहना करता हूँ। हम इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय उसके 6 पद में पढ़ते हैं, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसके लिए यह विश्वास करना आवश्यक है कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मेरे मित्रों, 5 पुत्रियां अपने पिता की संपत्ति प्राप्त करना चाहती हैं। उस समय का कोई नियम व कानून नहीं था कि वे कुछ पा सकें, अतः उन्होंने विश्वास से मांगा और विश्वास से ही परमेश्वर ने उन्हें संपत्ति प्रदान भी की। वर्तमान में हमारे लिए यहाँ पर एक बड़ा सबक है। हमें पता चला है कि हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें हैं। इफिसियों के पत्र 1 अध्याय उसके 3 पद में हम पढ़ते हैं, मेरे मित्रों, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हमारी सुनता और हमें उत्तर भी देता है, न केवल आत्मिक वरदान या आशीषें वरन शारीरिक वस्तुएं भी। मेरा मत है कि हम में से अधिक भीख मांगे हैं क्योंकि हम परमेश्वर से उसके बालकों के समान मांगते नहीं हैं। परमेश्वर हमारे साथ भलाई करना चाहता है। अपने मसीही जीवन में मैंने परमेश्वर से कुछ भी भौतिक वस्तुएं मांगने से परहेज किया। जब मैं परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए सेमिनरी में पढ़ता था तो मैं एक पुस्तकालय में काम करता था, रात्रि में और दिन में जब भी मुझे समय मिलता। मेरे मित्रों, जब मैंने सेमिनरी में अपने अध्ययन को समाप्त किया तो मैं सेवकाई के लिए प्रभु से एक मोटरसाइकिल की कामना की। क्या आप जानते हैं कि प्रभु ने मुझे एक नई मोटरसाइकिल प्रदान की? मित्रों, हम गरीब हैं क्योंकि हम जानते नहीं कि उससे कैसे मांग करें। और भी यह कि अद्भुत वस्तुएं हमारी हैं। यीशु मसीह में अद्भुत आत्मिक संपत्ति और उसके लिए हमें विश्वास से दावा भी करना चाहिए। सलोफाद की पुत्रियां अपने पिता की संपत्ति का हिस्सा चाहती थी, और आज हमारे पास आत्मिक वस्तुएं हैं जिनकी मांग हम कर सकते हैं। अपने पिता से कहें कि हमें विरासत की आत्मिक आशीषें चाहिए। मित्रों, वह हमको आशीष देना चाहता है। कितना अद्भुत है कि वह हमें आशीष दे। अब हम आगे देखते हैं, मूसा मृत्यु की तैयारी करता है। हम एक दुखद बिंदु पर पहुंचते हैं। बहुत समय से मूसा के साथ साथ चलते रहे और वास्तव में वह उत्पत्ति का लेखक है, इसलिए उत्पत्ति से अब तक उसके साथ रहे हैं। इस बिंदु पर उसे धरती छोड़ने को तैयार होना है। हम गिनती की पुस्तक 27 अध्याय उसके 12 से 14 पद में पढ़ते हैं, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबारीम नाम पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैंने इसराइलियों को दिया है, और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून की नाई तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नाम जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। यह मरीबा नाम सोता है जो सीन नाम जंगल के कादेश में है। मित्रों, परमेश्वर उस समय की चर्चा करते हैं जब उन्होंने मूसा को चट्टान से बात करने को कहा, पर उसने दो बार लाठी का प्रयोग किया। परमेश्वर यहाँ कहता है कि यह उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध विद्रोह था, क्योंकि मूसा ने ऐसा किया, अतः वह प्रतिज्ञा देश को देखने की अनुमति पाएगा पर उसमें प्रवेश नहीं करने पाएगा। मित्रों, मैं अपनी कक्षाओं में एक चतुराई से प्रश्न पूछता था, क्या मूसा प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किया? अधिकतर का उत्तर था नहीं। कभी कभी कोई तेज विद्यार्थी जवाब देता, हाँ, निसंदेह उत्तर हाँ में ही है, क्योंकि रूपांतर के पर्वत पर प्रभु यीशु के साथ वह दिखाई दिया। यह घटना मृत्यु के पश्चात की है। यहाँ उसे प्रतिज्ञा देश की एक छवि दूर से देखने को मिला। परमेश्वर उसे प्रतिज्ञा देश में प्रवेश नहीं करने देगा। आपने देखा कि अनाज्ञाकारिता हमें आत्मिक आशीषों में प्रवेश से वंचित रखता है। अविश्वास सदैव अनाज्ञाकारिता की ओर ले जाता है, और वास्तव में यही सब मूसा के साथ भी हुआ। हम गिनती की पुस्तक 27 अध्याय 15 से 19 पद में पढ़ते हैं, मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे। यहां पर देखें कि मूसा का स्थान लेने के लिए एक उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। वह आत्मा से भरपूर व्यक्ति था। मुझे स्पष्ट करना है कि सिर पर हाथ रखने से आत्मा से भरना नहीं होता है और न ही उससे कोई सामर्थ मिलती है। हाथ रखने से केवल एक ही वस्तु यानी रोग के कीटाणु पहुंचते हैं। इसका अर्थ किसी व्यवसाय में भागीदारी प्राप्त या उत्तराधिकारी पद पाने से है। आपको याद होगा कि कलिसिया में पौलुस और बर्नाबस के ऊपर हाथ रखकर अंताकिया को भेजा, क्या उससे उन्हें शक्ति मिली? कदापि नहीं। सामर्थ परमेश्वर की पवित्र आत्मा से प्राप्त हुई। यह इस बात को प्रकट करता है कि कलिसिया की संगति इन दोनों के साथ परमेश्वर की सेवकाई व साहसिक कार्य में है। सिर पर हाथ रखने का यही मतलब है। मेरे मित्रों, यहोशू को मूसा का उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाना था। जब मूसा काम समाप्त करेगा तो वहीं से यहोशू उसे आरंभ कर देगा। जब हम यहोशू नामक पुस्तक में आएंगे तो इसका अद्भुत वर्णन हम पाएंगे। यहाँ केवल इतना कहना चाहूंगा कि शिविर में उसका चयन हुआ तो वह सबसे आश्चर्यचकित व्यक्ति बना। एक प्रकार से तो वह मूसा का उत्तराधिकारी बनने की कम ही आशा रखता था, और आप जानते हैं क्यों? वह एक औसतन व्यक्ति था। कोई भी नहीं कहता कि उसके अंदर छिपे हुए अनेक गुण व्याप्त हैं। अगुवाई करने की सामर्थ आदि जिनकी चर्चा हम इन दिनों में बहुत अधिक करते हैं, परमेश्वर एक साधारण व्यक्ति को कहां तक उठाता है, यहोशू इसका प्रमाण है। मेरे मित्रों, मुझे आपको बताना है कि यहोशू और न्यायों की पुस्तक मेरे जीवन में सदैव प्रेरणा स्रोत बनी है। इन पुस्तकों से मुझे प्रेम है, कारण कि परमेश्वर कैसे साधारण लोगों को जो समर्पित जीवन व्यतीत करते हैं अपनी सेवा और कार्य के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है यदि आप उसके निकटता में आए। अतः यहोशू चुना हुआ व्यक्ति है, वह मूसा का स्थान लेने के लिए नियुक्त है। हम देखेंगे कि कुछ समय के बाद मूसा की मृत्यु के पश्चात व्यवस्था विवरण पुस्तक के अंत में यहोशू कैसा कार्य करता है। गिनती की पुस्तक 27 अध्याय उसके 22 और 23 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 27 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 28 और 29 से जारी रखेंगे। इसका विषय है नियत समयों के बलिदान। अब इसराइल प्रतिज्ञा देश में प्रवेश की तैयारी कर चुके हैं और एक नई जनगणना के साथ जिसमें युद्ध के लिए स्वस्थ व्यक्ति चुने गए हैं और यहोशू उनका सेनापति अर्थात कमांडर नियुक्त हुआ है। उनकी आत्मिक जीवन के बारे में भी बताया गया है। भेंट बलि आदि की स्थापना हो चुकी थी परंतु उनको संपूर्णता देने के लिए पुनः दोहराया गया। वे सारे राष्ट्रीय बलिदान जो पूरे वर्ष भर में पूरे किए जाने थे, क्योंकि लय व्यवस्था की पुस्तक में इन बलिदानों की चर्चा विस्तार पूर्वक की जा चुकी है। अतः निश्चित बिंदुओं पर जो विशेष रुचिकर और अर्थपूर्ण है उन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। मित्रों, इन भेंटों के विस्तार पूर्वक वर्णन में परमेश्वर ने इतना अधिक समय क्यों लगाया? सचमुच यह बहुत ही अचंभा करने वाला भी है। हमारे दिनों में यह विशेष रूप से सच है कि हम रक्त सहित बलिदान नहीं चढ़ाते और उनके लिए भी यह थकाने वाली प्रक्रिया थी। परंतु परमेश्वर को भेंट बलि चढ़ाने में कितना सतर्क होना चाहिए यह देखकर मुझे बहुत ताज्जुब होता है। क्यों? क्योंकि इसकी चर्चा इतनी विस्तार से है। इसका कारण इतना अद्भुत है कि संसार की किसी भी वस्तु में हम इससे चूक नहीं सकते। वास्तव में यह मसीह की बहुमूल्यता है जिस पर हमारा ध्यान आकर्षित होता है। हम गिनती की पुस्तक 28 अध्याय उसके 1 और 2 पद में पढ़ते हैं, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा सुना कि मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला मेरा हव्य रूपी भोजन तुम लोग मेरे लिए उनके नियत समयों पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना। मित्रों, ध्यान दीजिए कि उन महत्व बातों पर ध्यान दीजिए, मेरी भेंट मेरी रोटी, मेरा बलिदान मेरे पास इत्यादि। लय व्यवस्था पुस्तक से आपको स्मरण आएगा कि 2 प्रकार की भेंटें होती थी। 5 भेंट बलि हैं, वे 3 सुगंधित भेंट बलि तथा 2 न सुगंधित भेंट बलि हैं। मधुर सुगंधित भेंट बलि मसीह के व्यक्तित्व को और दूसरी मसीह के कार्य पर हमारे उद्धार के प्रकाश को डालती है। यहाँ परमेश्वर सुगंधित भेंटों की चर्चा करता है और उन्हें मेरी भेंटे करके संबोधित भी करता है। ये भेंटे इस बात का प्रतीक नहीं कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया या हमारा विचार उसके लिए क्या है, परंतु वे परमेश्वर का सोच उसके बारे में बखान करते हैं। परंतु इसका अर्थ आपके व मेरे लिए क्या है? हम आज आराधना और आराधना भक्ति पूजा पाठ के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, परंतु हमारी आराधनाओं में कितना सच है? कितनी कार्य प्रणाली बिना उद्देश्य के हैं? वास्तविक आराधना में हम परमेश्वर के विचारों को उसके प्रति ही सोचते हैं। ये सुगंध द्रव्य भेंट बलि जिसे परमेश्वर मेरी भेंट कहता है, मेरी रोटी मेरा बलिदान प्रतीक है कि परमेश्वर मसीह के बारे में क्या सोचता है। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर मसीह के क्रूस पर किए कार्य से जो उसने आपके और मेरे लिए किए अत्यंत संतुष्ट है। क्या आप उस काम से जो मसीह ने आपके लिए किया है संतुष्ट हैं? क्या आज आप भी उस पर निर्भर हैं? उसका निमंत्रण है, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 पद में हम इसे पाते हैं। मित्रों, क्या आपने अपने पाप का बोझ उस पर डालकर उसे अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया है? क्या आप संतुष्ट हैं कि वह कौन है? यदि वह परमेश्वर का पुत्र नहीं तो उसके बारे में कुछ और सोचना व्यर्थ होगा। सच्ची आराधना का अर्थ यह पहचानना है कि वह कौन है और उसके व्यक्तित्व को पूर्ण आदर सम्मान देना ही है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के विचारों को उसके द्वारा सोचना। मेरे मित्रों, इस प्रकार के विचार कई बार हम अपने जीवन में नहीं ला पाते हैं। आज मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर का आमंत्रण है, जैसा कहा गया है वचन में कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मित्रों, यह बुलाहट आपके लिए है। परमेश्वर आपके उन तकलीफों से, उन बीमारियों से, उन बोझ से और उन चिंताओं से मुक्ति देना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आप मुक्ति पाएं? न केवल इस सांसारिक बोझ से लेकिन हर एक प्रकार की बाधाओं से आपको छुड़ाना चाहते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, उससे अपना प्रभु अपना स्वामी करके स्वीकार करते हैं, तो निश्चय जानिए कि वह आपके पापों को क्षमा करेंगे और आपके जीवन में अपनी शांति प्रदान करेंगे। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और आज मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आशीष प्राप्त किया है। समय आपका है कि आप उसके पास शांति पाने के लिए आते हैं या नहीं। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू। तेरा लहू मुक्ति देता है, तेरा लहू शांति देता है, तेरा लहू मुक्ति देता है, तेरा लहू शांति देता है।